ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। मीठे बच्चे तुम्हें 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। बच्चे बस फॉर्मेलिटी कंप्लीट मत करो सेंटर पर आने की, मुरली के लिए अमृत वेला नुमा शाम अटेंड करने की, बाबा मिलन के लिए मधुबन आने की। तुमने इतने वर्षों में क्या पाया है हिसाब लगाओ। तुम कैसे थे और अभी कितने गुण तुम्हारे अंदर आए हैं हिसाब लगाओ अपने से। तुमने क्या पाया इस राह पर चलकर। तुम जब ज्ञान में आए तो तुम्हें पहला स्वमान मिला, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। कितना शांत बने हो, विचार करो अपने से, शांति कहाँ तक आई है। और बाबा कहते 100% बनना है, तो कितने परसेंट में तुम्हारे अंदर शांति आई है तुम चेक करो। मुरली सुनी, बहुत अच्छी बात है, 10 बार की और अच्छी बात है, 20-50 बार की बहुत 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 अच्छी बात है। पर धारण क्या किया, ये तुम्हारा ज्ञान क्या सिखाता है? तुमने कभी चिंतन किया है? तुम्हारा ज्ञान सिखाता है शांत स्वरूप रहना, नम्र चित्त रहना, प्रेम स्वरूप स्नेह स्वरूप रहना, सुख स्वरूप होकर सभी को सुख देना। ये तुम्हारा ज्ञान सिखाता है। तुम गुणों को चेक करो। सबसे पहला गुण है ज्ञान। कितना तुम ज्ञान स्वरूप बने हो। स्वमान तो कहते हो कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, अच्छी बात है, पर बने कितना हो। स्वमान कहना अलग बात है, बनना अलग बात है। बच्चे तुम आत्मा के ज्ञान को कितना जानते हो। आत्मा, तुम्हें क्या पता है आत्मा के बारे में, चलो बताओ। अंगुष्ठ समान जो बाप ने कहा था, कम से कम उतना पता है, विस्तार में नहीं जाते। चलो 16 एनर्जी पॉइंट, वो तो PhD है, पर बताओ अंगुष्ठ समान पता है। चलो बिंदी समान, उस बिंदी में मन बुद्धि संस्कार है, जानते हो आत्मा को। फिर अगर कोई अभ्यास करने वाला है तो कहेगा आत्मा सितारा है, उसके अंदर मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियां सभी है, ये सब जानते हैं। चलो स्वरूप बाद में बनेंगे, पर जानते कितना है बाप वो पूछ रहा है। हम जानते कितना है कि हम ये बने हैं ये स्वरूप, विचार करो बच्चे अपने से। फिर परमात्मा का ज्ञान तुम्हें कहाँ तक पता है, परमात्मा कैसा है, उसका नाम, उसका रूप, उसका धाम। फिर बच्चे ड्रामा का ज्ञान कितना पता है। बच्चे ये बात छोड़ो, लोग माने या ना माने, अंत तक ऐसे कभी नहीं होगा कि सारी दुनिया सारी बातों को मानेगी, ये कभी नहीं हो पाएगा। जिसका जो पार्ट है उस अनुसार वो चलेगा। दूसरे धर्म की आत्माएं तुम्हारे ज्ञान को क्यों माने, क्योंकि उनका ज्ञान अलग है, नहीं मानेंगे वो। तो बच्चे तुम देखो, तुम कितना जानते हो परमात्मा के बारे में। भले उनकी मान्यता अलग है परमात्मा की, पर तुम्हारी जानकारी क्या है परमात्मा को लेकर, चिंतन करो। समझ की बात है बच्चे? उसी प्रकार ड्रामा की बात जो बाबा कह रहा है, ड्रामा को तुमने कितना समझा है। ज्ञान स्वरूप मास्टर ज्ञान सूर्य की बात चल रही, पहले गुण की बात चल रही है। ड्रामा को तुमने कितना समझा है, विचार करो। तुम कहते हो हाँ बाबा, ड्रामा के लिए तो हम हाजी करते ही हैं हर वक्त। ठीक है बच्चे, ड्रामा के लिए हाजी करते हो, पर कब? दूसरे ड्रामा के लिए, दूसरे बच्चों के जीवन में जो ड्रामा घटित होता है उसके लिए। हिमाचल में इतनी आपदा आई, आज उन बच्चों के पास घर नहीं है, न कपड़ा है, न खाने के लिए अन्न है, न स्कूल कॉलेज जाने के लिए पढ़ने के लिए किताबें हैं, कुछ भी नहीं बचा, न बैंक से पैसे निकालने के लिए पासबुक बचा है, न एटीएम कार्ड क्रेडिट डेबिट कार्ड बचा है। तुम कहते हो उनके साथ हुआ, तुमने सुनी खबर मोरक्को में इतना बड़ा भूकंप आया, तुम्हें कुछ लगा? इतने सारे लोगों के घर चले गए, अब कब मिट्टी मलबा उठाया जाएगा और कब उनके पासबुक मिलेंगे? कौन सी बैंक बिना पासबुक के पैसे देगी? सरकारें भी क्या करेंगी? तो ड्रामा चल रहा है, तुम कहते हो कहने के लिए, वो तो ड्रामानुसार विनाश का समय है, ये तो होगा ही। पर तुम्हारे भाई बहने हैं ना, आत्मा रूप में भाई भाई है ना, तो तुम्हें कुछ नहीं लगता उनके बारे में जरा भी? चिंतन करो, कुछ नहीं लगता। और यही ड्रामा अगर तुम्हारे साथ घटित हो जाए तो तैयार हो, फिर भगवान के नाम से मेरे नाम से रोना नहीं बच्चे। दूसरे के साथ घटित हो जाए तो ड्रामा, और मेरे साथ घटित हो जाए तो कहेंगे बाबा हम तो आपके साथ हैं, आपके ज्ञान में चल रहे हैं, हमारे साथ ऐसे कैसे हुआ? सवाल पूछने में कुछ नहीं लगा बच्चे तुझे? तूने ये क्यों नहीं पूछा मुझे कभी, बाबा मोरक्को के बच्चे के साथ ऐसे कैसे हुआ, हिमाचल के बच्चों के साथ ऐसे कैसे हुआ, वो हांगकांग में बाढ़ आई ऐसे कैसे हुआ, वो अभी इतना बड़ा स्टॉर्म आ रहा है, दो दो तरफ से आ रहे ऐसे कैसे हो रहे समुद्री तूफान? तुम कभी नहीं पूछते जब दूसरों के साथ घटित होता है। बस तुम्हारे साथ घटित हुआ, तुम तुरंत पूछोगे बाबा ऐसे कैसे हुआ, शिव मंदिर के ऊपर ही मलबा गिर गया, इतने बच्चों ने शरीर छोड़ दिया, ऐसी घटना तो कभी सुनी नहीं हमने। तुम्हारे साथ हो जाए तो रोने के लिए तैयार हो मेरे नाम से, और दूसरों के साथ हो जाए तो ड्रामा कहने के लिए तैयार हो। बच्चे हर दिन किसी न किसी का नंबर है, ध्यान में रखना, और एक दिन तुम्हारा भी नंबर है। जब तक तुम्हारा नंबर लगे तैयारी करके रखना ड्रामा की। कितना ज्ञान है तुम्हें ड्रामा का, मैं भी तो देखूं, मैं भी तो जानूं बच्चे कि ड्रामा को तुमने कितना एक्सेप्ट किया है पूरा पूरा, ड्रामा पर तुम कितने राजी हो। समझ की बातें बच्चे, चिंतन करो। ऐसा ज्ञान है, फिर है राजयोग का ज्ञान। कितने ज्ञान स्वरूप बने हो राजयोग से, तुम्हें पता है राजयोग बच्चे? तुम सिखाते हो सभी को, कहते भी हो सभी को कि अपने को आत्मा समझ, परमात्मा बाप को याद करो। तुम करते हो आत्मा समझकर, चेक करो, विचार करो अपने से, अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को तुम याद करते हो क्या? तुम कहते हो राजयोग से विकर्म विनाश होते हैं, पर तुम कब करते हो बच्चे? क्या कहता है बाप? बच्चे मुझे रोज 8 घंटा याद करो आत्मा समझकर। तुम्हारे पास रोज का 8 घंटे का चार्ट है क्या? वापस मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें जितने साल हुए हैं ज्ञान में, किसी को 30 साल, 40 साल, 20 साल, 10 साल, तो कम से कम उतने दिनों का 8 घंटे का चार्ट है? 30 साल हुए तो 30 दिन का 8 घंटे का चार्ट है, 40 साल हुए तो 40 दिन का, 10 साल हुए तो 10 का, 20 साल हुए तो 20 दिन का, 8 घंटे का? मैंने तो कहा है रोज याद करो, पर मैं साल में एक चार्ट मांग रहा हूँ, है क्या तुम्हारे पास? बच्चे चेक करो, ये एक ही गुण है ज्ञान। बाप कहता है 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है, अभी बस मैं ज्ञान इस गुण की चर्चा कर रहा हूं। कितना है तुम्हारे अंदर ये सब शांति बच्चे? कितनी है तुम्हारे अंदर? चिंतन करो, शांति कितनी है? जब सब ठीक है तब तुम शांत हो, वो कोई शांति नहीं है, वो शांति नहीं। जब बाहरी रूप से सब अशांत है, प्राकृतिक आपदाएं चल रही है, शरीर बीमार है, खाने को अन्न नहीं है ठीक से, पहनने को वस्त्र नहीं है ठीक से, रहने को घर भी नहीं है ठीक से, बाहरी रूप से लेकर कुछ भी ठीक ठाक नहीं है, कुछ भी, उस समय तुम शांत रह कर दिखाओ। कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, कोई तुम्हारी ग्लानी कर रहा है, तुम्हें गाली दे रहा है, बुरा बोल रहा है, शांत रह कर दिखाओ, इसे कहते हैं शांति। यह है शांति बच्चे, है तुम्हारे पास एकदम शांत चित्त? कुछ भी हो जाए, कोई कितने भी अवगुण दिखाए, कितने भी बुराई के कर्म करे, लेकिन हम अशांत नहीं होंगे। कोई कितना भी हमारा नुकसान करे, लेकिन हम शांत ही रहेंगे। है ऐसी शांति? चेक करो, यहां तक कि बच्चे तुम मुरली पढ़ रहे हो और तुम्हारे हाथ से किसी ने मुरली छीन ली, और शांत रहना है। तुम योग कर रहे हो और कोई तुम्हें हिला रहा है, योग करने नहीं दे रहा है, मुरली पढ़ने नहीं दे रहा है, ड्रिल करने नहीं दे रहा है, सकाश देने नहीं दे रहा है, स्वमान करने नहीं दे रहा है। तुम बैठे हो योग में और किसी ने आके माथे पर एक गिलास पानी डाल दिया, फिर भी शांत है? ऐसी शांति? यह है शांत स्वरूप का गुण, माना कोई रिएक्शन नहीं। आपने किया, आपको अच्छा लगा, मुबारक हो, कोई इरिटेशन भी नहीं। ऐसे भी कि और कितना भी करना हो अभी करवा के ले लो फिर हम हमारे योग में बैठते, नहीं, कुछ रिएक्शन नहीं, एकदम शांत। चेक करो बच्चे अपने गुण को, चेक करो। समझ की बात है बच्चे, सुख है तुम्हारे अंदर, स्वयं को सुख देते हो। स्वयं को सुख देना क्या है? मुरली पढ़ना स्वयं को सुख देना है, योग लगाना स्वयं को सुख देना है, ड्रिल करना स्वयं को सुख देना है, सकाश स्वमान, बाबा की कोई भी श्रीमत, स्वयं को सुख देना है बच्चे। ये स्वयं को सुख देना हुआ, देते हो क्या? उसी प्रकार दूसरों को भी देते हो सुख? चेक करो अपने को, क्या तुम दूसरों को भी सुख देते हो क्या? कर्मणा सेवा अलग बात है, वाचा सेवा अलग बात है, पर बच्चे ईश्वरीय सुख देना दूसरों को, बाहरी सुख कितना भी दो वो तो कर्तव्य के रूप में देना ही है, पर आत्मा के प्रति का कर्तव्य, माता पिता पति पत्नी बच्चे इनको सुख देना बाहरी रूप से, धन कमा के लाना, भोजन बना के देना, उनकी व्यवस्था करना, उनकी देखभाल करना, उनको संभालना, यह सब बाहरी सुख है नाम रूप के लिए, रिश्ते के लिए, पर आत्मा का सुख देते हो क्या? कभी ज्ञान सुनाते हो ईश्वरीय? चेक करो। कभी कहते हो उन्हें जरा परमात्मा के साथ योग लगाओ आत्मा समझकर, आपका भी कल्याण होगा, शायद वो तुम्हें गाली दे इस बात पर, पर तुम्हारा काम है अपने कर्तव्य करना। सुख देते हो क्या? चेक करो, अपने आप को चेक करते रहो हमेशा। पवित्रता कितनी है बच्चे, स्वयं को लेकर और दूसरों को लेकर? चेक करो। प्रेम स्नेह कितना है दूसरों के प्रति, स्वयं के प्रति? चेक करो। विसार में बात करते हैं, स्नेह स्वरूप बने हो? चेक करो अपने आप को। सभी से स्नेह से चलते हो, प्रेम से एकदम? तुम्हें पत्थर मारने वाला, गाली देने वाला संकल्प नहीं कट कर रहे, उससे भी बड़े स्नेह से प्रेम से चलना चलते हो क्या? शक्ति स्वरूप बने हो? शक्ति स्वरूप स्वयं के लिए बनना है, प्रेम स्वरूप दूसरों के लिए बनना है। खुद के साथ जब भी चलना हो, पुरुषार्थ में, श्रीमत में, सेवाओं में, लॉ से चलना है शक्ति स्वरूप, और दूसरों के साथ जब भी चलना हो किसी भी क्षेत्र में, लव से चलना है प्रेम स्वरूप। ध्यान में रखना इस बात को, तो 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। कब बनोगे? सदानंद स्वरूप रहते हो। सदानंद मन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईश्वर जैसे चलाए, जैसे रखे, जहां रखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी मर्जी। जो उसकी मर्जी से चलता है वही सदानंद स्वरूप रह सकता है, बाकी नहीं रह सकते। सदानंद उसी का नाम, उसी का गुण है, तो उसके मर्जी से चलेंगे तो सदानंद स्वरूप में रहेंगे। विचार करो अपने से, रहते हो क्या सदानंद स्वरूप? बस उसकी मर्जी, वो जो खिलाए जो पिलाए, मेरी कोई चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं किसी भी क्षेत्र में। कभी देखो रोटियां बनती है यज्ञ में, घर में, घर भी तो यज्ञ है, किसी प्रोग्राम में, सेंटर में, और अगर परोसने वाला नहीं है तो तुम ऊपर नीचे अच्छी रोटी देख के निकाल के खाते हो, कौन सी सॉफ्ट है, कौन सी ज्यादा घी वाली है, घी तो खाते नहीं अभी, समझ की बातें। पर बच्चे तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जिस लाइन में आए हो, जिस नंबर से आए हो, मना अभी जो रोटी है वो तुम्हारे लिए है, तुम नीचे वाली नहीं ले सकते, ऊपर वाली रोटी उसने रखी है, फिर वो जैसी भी हो, जली हुई हो या अच्छी सेकी हुई हो, तुम ये नहीं कह सकते ये अच्छी नहीं दूसरी लेता हो, वो तुम्हारे लिए रखी है। बच्चे सब उसकी मर्जी से, सब उसकी मर्जी से, मेरी कोई मर्जी नहीं। क्यों मर्जी रखूं, किस लिए मर्जी रखूं? सदानंद स्वरूप बनना है तो बच्चे उसकी मर्जी से चलो, बड़ा आनंद आएगा। बहुत गुण हैं, बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जितनी बात करें उतनी कम होगी। बस अपने अंदर चेकिंग करते रहो, इतने वर्षों में मुझे क्या मिला है इस ज्ञान में चलकर। देखो, ज्ञान सुनने से सतयुग में त्रेता में जहाँ आना है तुम आ जाओगे, ये बाप के वचन है। पर राजा बनना है तो धारणा करनी पड़ेगी, पढ़ाई को पढ़ना पड़ेगा। बच्चे रॉयल फैमिली के लोग भी होते हैं, बड़ी पढ़ाई करते हैं बच्चे मैनर्स की, अच्छी खासी, कितने सालों तक अभ्यास करते हैं रॉयल्टी का, तब जाके संस्कार बनते हैं। ऐसे नहीं कि जन्मते ही रॉयल्टी आ जाती है उनके चाल चलन में, उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे बात करना है। तो बाबा भी तो यही कह रहा है, यहाँ के गुण शक्तियों को अच्छे से धारण करोगे तो तुम अगली दुनिया में जा पाओगे। विचार करो अपने से, तुम करते हो क्या, चिंतन करो। मर्जी तुम्हारी बच्चे, पर हिसाब लगाओ तुमने क्या पाया है इतने वर्षों में। बस चलना नहीं, कुछ तो पाओ, कुछ तो समझ है। मर्जी तुम्हारी, दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। चेक करो अपने आप को दर्पण में, पावन कहाँ तक बने हैं। पावनता का अर्थ क्या है? सर्व गुणों से संपन्न। पावनता मना सिर्फ पवित्रता नहीं, पवित्रता तो बस एक एंगल है। तुमने पवित्रता को भी ब्रह्मचर्य बना दिया। पवित्रता मना वृत्ति, विचार, दृष्टि, बोल और कर्म, व्यवहार, सभी में शुद्धता, वो है पवित्रता। समझ की बातें, अपने को चेक करो, तुम पावन कहाँ तक बने हो। पावनता का अर्थ क्या है? सभी से आत्मा रूप में व्यवहार करना, स्वयं को आत्मा समझकर, यह है पावनता। अगर तुम आत्मा रूप में आत्मा से व्यवहार नहीं करते तो तुम पतित हो। आत्मा रूप में किसी भी आत्मा से तुम जब भी आत्मा का व्यवहार करोगे, गलत व्यवहार हो ही नहीं पाएगा, कितनी भी कोशिश करो। अगर गलत व्यवहार हुआ तो मैं मेरा पद त्याग दूंगा, गारंटी देता हूं। गलत व्यवहार हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। आत्मा समझकर, आत्मा से व्यवहार करके देखो, आप बहन जी भाई जी भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आत्मा मेल फीमेल नहीं है, आप ही निकलेगा, सिर्फ आप, बहन जी भाई जी भी नहीं आएगा। इसलिए बच्चे विचार करो, दिल दर्पण में चेक करो, मर्जी तुम्हारी। प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते हो और मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं? उत्तर है, तुम दैवी धर्म की स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैपलिंग लगानी है। वे मनुष्य तो जंगल के कांटों की सैपलिंग लगाते और नाम देते हैं वनोत्सव। तुम कांटों से फूल बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम्हारे जैसा उत्सव और कोई मना नहीं सकता। बच्चे पहले बनो, फिर बनाओ, कोशिश करो, बनाने की पूरी पूरी चेष्टा करो, प्रयास करो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी, ओम शांति। यह किसने कहा, यहाँ तो है ही बाप और बच्चों का सम्मुख मिलन। बच्चों को अब दिव्य चक्षु ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है देखने के लिए, क्योंकि पतित अथवा पाप आत्माएं तो सब थे। पतितों को पावन बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। यह श्रीमत देने वाला कौन है उनको भी समझना चाहिए। वही बोलते हैं आत्माओं को। आत्मा जानती है मैंने इस शरीर से अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। बाबा तुम बच्चों को समझ देते हैं। बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, तुम जो हर किसी के प्रति कर्म कर रहे हो वो तुम किसी और के प्रति नहीं कर रहे हो, वो तुम तुम्हारे प्रति कर रहे हो। वो बच्चा भविष्य में किसी जन्म में तुमसे कैसा व्यवहार करे ये तुम अभी रचना रच रहे हो संगम पर। तुम किसी का अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम अपने भविष्य का अच्छा करके रख रहे हो। तुम किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, तुम खुद ही अपना भविष्य बुरा कर रहे हो। समझ की बात है बच्चे? इसलिए बच्चे कभी ये नहीं समझना कि तुमने किसी के लिए किया है, जो कर रहे हो सिर्फ अपने लिए ही कर रहे हो। तुम भ्रम में रहते हो कि तुम किसी के प्रति अच्छे कर्म कर रहे हो, भ्रमित हो तुम। चिंतन करो बच्चे, तुमने बस अपने भविष्य के प्रति अच्छे कर्म करके रखे हैं ताकि भविष्य में वो बच्चा वो आत्मा तुम्हें किसी पार्ट में मिले तो तुम्हारे साथ अच्छा पार्ट बजाए। ये तो दुनिया है, गलती होना स्वाभाविक है क्योंकि कलयुग है, वो उस आत्मा का पार्ट है। पर गलती को लेकर तुम्हारी रिएक्शन क्या है ये अभी तुम्हारा पार्ट है। जैसी अभी तुम्हारी रिएक्शन है वैसे ही वहाँ पर द्वापर के बाद वो रिएक्शन दिखाएगा सूत समेत। इसलिए संभल कर चलो बच्चे, ध्यान दो इस बात पर। बच्चे इसलिए कर्मों पर ध्यान दो पूरा पूरा। यहाँ तुम जिसके प्रति जो कर्म करोगे वही तुम्हें वापस आएंगे। ध्यान में रखना इससे इस बात को। कर्म, तुम कभी कभी ज्ञान में चलते हो और तुम्हें लगता है माता पिता पति पत्नी बच्चे इनके प्रति कैसे भी कर्म करें, ऐसे तुम्हें लगता है कभी कभी। पर क्या होगा बच्चे, अभी वो भी कैसे भी करेंगे तुम्हारे साथ। ये लौकिक की बात हुई। फिर ब्राह्मण परिवार में जुड़ जाते हो, तुम आदि से ज्ञान में हो, तुम्हें क्या लगता है तुम सीनियर हो। अभी आने वाले नए बच्चों के साथ तुम कैसा भी व्यवहार कर सकते हो, यहां तुम सीनियर हो। और तुमने जिनके साथ जैसा व्यवहार किया अभी वो वहाँ सीनियर हो जाएगा तुम्हारा। कोई राजा बनेगा, कोई प्रधान बनेगा और तुम जूनियर हो जाओगे। सेम व्यवहार तुम्हें लौटाया जाएगा बच्चे। तुम संगम पर जो देते हो वही तुम्हें कल्प भर मिलता है। इसलिए संगम दान करने का युग है। जो दोगे सो पाओगे। अच्छे बोल दिए अच्छे बोल मिलेंगे। और बाप का हिसाब कैसा है, यहाँ का एक सेकंड वहाँ के एक साल के बराबर है। यहाँ किसी को एक सेकंड में दिया तुमने गुड मॉर्निंग बड़े प्यार से, वहाँ वो तुम्हें एक साल तक गुड मॉर्निंग करेगा बड़े प्यार से। यहाँ एक सेकंड के लिए तुमने किसी को पानी दे दिया, वहाँ वो तुम्हें एक साल तक पानी देगा। और इस भाव से मत करो कि तुम्हें मिले। बच्चे ध्यान में रखो इस बात को हमेशा। तुम अपना कल्प का परिवार संगम पर ही बनाते हो। ध्यान में रखना इस बात को, तुम अपना कल्प का, पूरे कल्प का परिवार संगम पर ही बनता है। इसलिए यहां तुम जिनके साथ जैसे रहोगे, जैसे चलोगे, वैसे तुम्हें पूरे कल्प में मिलेगा। अब मर्जी तुम्हारी कैसे चलना है, किसी पर नाराज होना है, उदास होना है, किसी के बोल से डिस्टर्ब होना है, या किसी को सुख देना है, आनंद देना है, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है, मर्जी तुम्हारी। ये संगम बस प्राप्ति का युग है। फिर मैं ये नहीं कह सकता सिर्फ अच्छी प्राप्ति का, मैं कहता हूं प्राप्ति का। मेरे वर्ड्स हमेशा न्यूट्रल होते हैं, जिनका अर्थ दोनों तरफ से निकलता है। संगम पर हंगामे करो और दुख पाओ, संगम पर सबको सुख दो और सुख पाओ। प्राप्ति दोनों में है, दुख भी प्राप्ति है, सुख भी प्राप्ति है। मर्जी तुम्हारी क्या पाना चाहते हो। संगम न्यूट्रल कभी नहीं चलता, ध्यान में रखना यह संगम है। यहां पर या तो तुम अपने दुख की रचना रचोगे या तो अपने सुख की रचना रचोगे, दोनों में से एक होगा। तुम ये नहीं कह सकते कि न्यूट्रल चले, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। न लेना है न देना है, ये कार्य, ये पार्ट सिर्फ बाप कहता है मेरा है। मैं स्थूल रूप से न कुछ देता हूं न कुछ लेता हूं, ये पार्ट मेरा है बस, तुम्हारा नहीं है। तुम कुछ तो लोगे और जो लोगे वही दोगे, जो दोगे वही लोगे, मर्जी तुम्हारी। इसलिए कोई बच्चे होते हैं ईश्वरीय परिवार के, जिनका आत्मा आत्मा भाई के रूप में रिश्ता बहुत सुंदर होता है, फिर अनेक जन्मों पाठ बजाते, बहुत अच्छा। बच्चे रिश्ता दूसरे से नहीं बनता, रिश्ता तुमसे बनता है, तुम्हें बनाना होता है आत्मा आत्मा भाई। पहाड़ तुमसे रिश्ता नहीं बना सकता, तुम्हें पहाड़ से रिश्ता बनाना पड़ेगा। नदी तुमसे रिश्ता नहीं बना सकती, तुम्हें नदी से रिश्ता बनाना पड़ेगा। पेड़ तुमसे रिश्ता नहीं बना सकता, तुम्हें पेड़ से रिश्ता बनाना पड़ेगा। तुम क्या सोचते हो, पहाड़ रिश्ता बनाए, नदी बनाए, पेड़ बनाए? इम्पॉसिबल है। इस दुनिया की कोई भी आत्मा तुमसे रिश्ता नहीं बनाएगी, तुम्हें उनसे रिश्ता बनाना पड़ेगा। तुम परमात्मा के साथ रिश्ता बनाओगे या परमात्मा तुमसे रिश्ता बनाए, बाप बच्चे का? जरा बताओ मुझे, तुम्हें बनाना है ना, परमात्मा तो नहीं बना सकता, क्योंकि वो तो है सदा से और उसका कोई पार्ट नहीं है। बच्चा तुम्हें बनना है, वो बाप सदा का है, मर्जी तुम्हारी है। बच्चा बनोगे तो पाओगे, बच्चा नहीं बनोगे तो नहीं पाओगे, मर्जी तुम्हारी। वापिस मैं क्या कहूं, तुम्हारी मर्जी। इसलिए तुम्हें बनना है। मैं पूछना चाहता हूं अब तक के सारे ब्राह्मण बच्चों को, कितनी आत्माओं के साथ आत्मा आत्मा भाई भाई के रूप में तुम्हारा रिश्ता बड़ा सुंदर है, जरा मुझे हिसाब बताओ। उनके रिश्ते की मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे रिश्ते की तुमसे बात कर रहा हूं। भल वो तुम्हें गाली देते हैं, भल वो तुम्हें बुरा बोलते हैं, पर तुम कितनों को प्यार करते हो, तुम कितनों को अच्छा बोलते हो, मैं भी तो जानूं। उनका तुम्हारे साथ रिश्ता कैसा है वो छोड़ो, तुम्हारा उनके साथ कैसा है ये जरा बताओ। तो बच्चे चेक करो तुम्हारा रिश्ता कैसा है, मैं भी तो जानूं उनका कैसा है। ये छोड़ो, देखो बच्चे तुमने कौन से, ये ध्यान से सुनना सभी बच्चे, तुमने कौन से आम के वृक्ष को पानी दिया, डजंट मैटर, अफ्रीका में है तो वहां दिया, अमेरिका में दिया, रशिया में दिया, जापान में दिया, भारत में दिया, कौन से काल में दिया, डजंट मैटर, पर तुमने आम के वृक्ष को पानी दिया ना। कहीं तुम घूमने गए और तुमने देखा यहां आम का वृक्ष है और तुमने बचा कुचा पानी उसे डाल दिया अपने बॉटल का, रहा हुआ रिश्ता बन गया। अभी उस आम को किसी ना किसी जन्म में तुम्हें फल देना ही पड़ेगा, भल वही अफ्रीका, अमेरिका, रशिया, जापान, भारत का आम नहीं होगा, पर आम एक प्रजाति है, आम एक शक्ति है, वो शक्ति तुम्हें किसी न किसी देश में फल जरूर देगी क्योंकि तुमने पानी दिया था। इसलिए तुमने कौन से जन्म में किसको अच्छे बोल बोले, डजंट मैटर, वो वापस आएंगे ही आएंगे, भले उसने बोले या नहीं बोले, उस घड़ी उस आम ने तुम्हें फल दिया या नहीं दिया। कभी कभी ऐसे समझो कि जन्म से लेकर तुमने अपने शरीर के मृत्यु तक किसी आम के पेड़ को पानी दिया, कभी उसको फल नहीं निकला, एक भी फल तुम्हें नहीं मिला कभी जीवन में उस आम के वृक्ष का, पर पानी दिया है ना, हिसाब तो बना हुआ है। अभी अनेक जन्मों में फल खाओगे बैठकर, बच्चे कार्मिक अकाउंट है, संभल कर चलना, संभल कर चलना, तुम्हारे एक कर्म का परिणाम कितना बड़ा आता है तुम कल्पना नहीं कर सकते। बाबा ने कैसे सिखाया, सुबह उठने के बाद बाबा को गुड मॉर्निंग करो, स्वयं को गुड मॉर्निंग करो, आत्मा को, अपने मन बुद्धि संस्कार को करो, गुण शक्तियां दिव्य गुणों को करो, अपने तन को करो, अपने कर्मेंद्रियों को करो, अपने मस्तिष्क को करो, अपने वास्तु को करो, फिर एडवांस पार्टी को भी करो, उसके बाद प्रकृति को करो, तत्वों को करो, सबका शुक्रिया अदा करो, थैंक यू कहो, इतने सब सेवा कर रहे हैं, भले इस घड़ी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम रोज गुड मॉर्निंग कर रहे हो, इस घड़ी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा ऐसे समझ कर चलते हैं, पर गुड मॉर्निंग तो रहा हुआ है, अभी उनका गुड मॉर्निंग क्या है, हवा को तुमने गुड मॉर्निंग किया हुआ रहा है। किसी दिन तुम कहीं जाओगे घूमने, या किसी जन्म में कहां पर तुम्हारा स्थान होगा और उस समय मन होगा ऐसी हवा है और आ जाती है, वो गुड मॉर्निंग है उसका, सुबह सुबह इतनी सुंदर हवा आई, ऐसा आसमान हो, हो जाता है, इस प्रकार की धूप आ जाए, आ जाती है। बच्चे यहां कुछ नहीं छूटता, कभी नहीं छूटता, इसलिए कर्मों पर ध्यान दो, पूरा पूरा कर्मों पर ध्यान दो। कोई बच्चे कहते उसको क्या होता है, इतनी सी तो बात है, क्या बात कर रहे बच्चे, इतनी सी बात है, और एक सेकंड का हिसाब अगर एक साल से लगाए तो एक साल की बात है, चलेगा। देखो बच्चे ये संगम है, यहां तुम्हें अच्छा मिले ना मिले तुम क्या देखना चाहते हो, तुम यहां गुड मॉर्निंग करो तो सामने वाला तुम्हें गुड मॉर्निंग करे, ये तुम अपेक्षा रख रहे हो। अभी अभी बीज लगाया, अभी अभी वृक्ष को पैदा करके, अभी अभी फल खाके उस वृक्ष को समाप्त करना चाहते हो, कैसे अजीब बच्चे हो। अभी अभी बीज लगाया है ना, धीरज धरो, फल की आशा नहीं रखो, उस वृक्ष को पूरे कल्प का महावृक्ष होने दो, फिर पूरे कल्प में फल खाओगे फिर भी समाप्त नहीं होंगे। इसलिए बाबा कहता है बस श्रेष्ठ कर्म करते चलो। गीता में भी यही कहा है, कर्म करो फल की चिंता नहीं करो। अभी अभी अगर फल खाना है तो निकालो बीज को बाहर वापस और खा लो उसे, बात समाप्त हो गई। तुम्हारा काम है संगम पर बस अच्छे कर्म करना, अच्छे बोल बोलना, अच्छी दृष्टि से चलना, सदा अच्छे विचार श्रीमत अनुसार विचार रखना और सभी के प्रति श्रेष्ठ वृत्ति रखना। ये तुम्हारा काम है। तुम्हारे प्रति कोई कैसी भी वृत्ति, कैसे भी विचार, कैसी भी दृष्टि, कैसे भी बोल और कैसे भी नुकसानदायक कर्म हो तो भी हर्जा नहीं, वो उनका पार्ट है। तुम अपने पार्ट पर अटेंशन दो। तुम समझ नहीं पा रहे हो संगम को, यही गफलत है तुम्हारी। तुम अभी अभी रिजल्ट देखना चाहते हो हर बात का और बाबा कहते ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। मेरे पास कोई ऐसा बीज लेके आ जाओ, होगा शायद तुम्हारे साइंस का बनाया हुआ, पर मैं चाहता हूँ पुराने वृक्षों का ऐसा बीज लेके आ जाओ जिसको अभी लगाया और तुरंत उसमें से पौधा निकला और तुरंत उसने फल देना शुरू कर दिया। कोई हो सकता है उदाहरण प्रकृति में, पर सारे वृक्ष तो ऐसे नहीं होते ना। तुम्हारा काम क्या है? बीज बोना। बच्चे जंगल बनने में सालों जाते हैं, सैकड़ों साल, तब जंगल बनता है एक वृक्ष से, दो चार दस वृक्ष से जंगल बनता है सैकड़ों सालों के बाद, और उस जंगल को हजारों सालों में काटते फिर भी खत्म नहीं होता। अब धरती पर जो जंगल है, हजारों साल हुए द्वापर से काट रहे हैं ना, खत्म हो रहे जंगल सारे धरती के नहीं हो रहे, कितना भी बैन करे गवर्नमेंट फिर भी जिनको आवश्यक है लकड़ियां वो तो काट ही रहे हैं, जिनको लाइसेंसेस मिले वो तो काट ही रहे हैं, फिर भी खत्म नहीं हो रहे। ये बच्चे बीज है, तो तुम भी अपने कर्मों के श्रेष्ठ बीज डालो जो पूरे कल्प भर खत्म ना हो। पूरे कल्प भर क्या, अगले कल्प में भी वो चले, ऐसे बीज हो तुम्हारे। तुम अभी अभी रिजल्ट देखना चाहते हो, नादानी मत करो बच्चे, गफलत मत करो। तुम बस मुरली पढ़ते जाओ, तुम बस मुरली को धारण करते जाओ, तुम बस श्रीमत अनुसार योग ड्रिल सकाश स्वमान सब जो बाबा का ज्ञान है प्रैक्टिकल बातें वो करते जाओ, तुम बस श्रीमत अनुसार गुण धारण करते जाओ, शक्तियाँ दिव्य गुण धारण करते जाओ, तुम बस करते जाओ। तुम्हें क्या मिलेगा ये मत सोचो, बाप बैठा है उसके लिए, तुम बस करते जाओ। मर्जी तुम्हारी बच्चे, और क्या कहूँ मैं, तुम्हारा काम है बस करना। तुम फल चाहते हो, फल की आशा मत रखो, समझ की बातें हैं बच्चे, फल की आशा नहीं रखो, ऐसे नहीं रखे जाते। तुम अभी के बारे में सोचते हो, बाप कल्प के लिए कहता है, जैसे बाप के साथ चलने वाले कुछ बच्चे आदि सो अंत पाठ बज ही रहा है, वो तो ड्रामा है, ड्रामा अनुसार होगा ही होगा। बच्चों को बाप ने कितना समझाया, बच्चे छोड़ो नौकरी, बस करो अभी, बस हुआ धंधा, तुम्हारे पास बहुत धन है, अभी चलो बाप के साथ विश्व कल्याण के अर्थ, अपने लिए भी नहीं विश्व कल्याण के लिए चलते रहो। पर बच्चे समझते नहीं, और फिर आकार संदेश दे देता है, क्या अगले कल्प में ये नज़दीक नहीं आएंगे अंत समय में। इन्हें बाप के साथ साकार में पार्ट नहीं मिलेगा, इनका पार्ट इस कल्प में ही कैंसिल हो गया। अगले कल्प में ये बाप से बहुत दूर रहेंगे, क्योंकि विश्व कल्याण की सेवा अर्थ इन्होंने छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया। वो करना है ना, नहीं कर रहे। बाप छूटा, सेवा छूटी। कारण क्या बना? नौकरी, धंधा, परिवार, मर्जी तुम्हारी। बच्चे, रिजल्ट यहां नहीं दिखेगा, यहां नहीं दिखेगा बिल्कुल। तुम बस श्रीमत पर चलो। संत आए इस दुनिया में, जब वो थे तब रिजल्ट दिखा, आज सोने की पालकी में बिठाते हैं, सोने की मूर्ति, सोने की हीरे जवाहरातों से भरी हुई उनकी मूर्तियां, उनकी थालियां। पर जब संत थे कोई रोटी नहीं देता था, दान में गाली ही देते थे। पर संतों ने अपना धंधा छोड़ा, हरि गोविंदा राम नाम का नहीं छोड़ा। तुम्हें भी अपना धंधा करना है विश्व कल्याण का। दुनिया कैसे भी चले, तुम्हें श्रीमत अनुसार चलना है। यहां परिणाम नहीं दिखेगा बच्चे, तुम दुनिया के लिए करते जाओ जैसे संत करते रहे। संतों के होते हुए कभी परिणाम नहीं दिखा, पर उनके जाने के बाद आज उनके द्वारा जो बाप ने कार्य कराया, परमात्मा ने जो कार्य कराया, उसी से सब जी रहे। वही आधार बना है सबका, भक्ति का। बच्चे समझ की बातें, इसलिए बस श्रेष्ठ कर्म करो। यहां पर जब भी मुख खोलो, बाप क्या कहता है, रतन निकले सभी को सुख देने वाले। तुम्हें पता है ना, वो रतन होते हीलिंग करते, अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल्स होते हैं, रतन है वो, हीलिंग करते। डायमंड भी तो हीलिंग करता है, इसलिए डायमंड की मान्यता इतनी बड़ी है, उसका पहनावा इतना बड़ा है, हीलिंग पावर ज्यादा है उसके अंदर। तो तुमसे भी, तुम्हारे मुख से भी ऐसे रतन निकले जो सामने वाले की हीलिंग हो जाए। मायावी पत्थर नहीं निकालना कीलिंग करने वाले, जो किसी की कीलिंग करे, हत्या करे। जिये दान देने वाले रतन निकालना, हीलिंग करने वाले। समझ की बात है बच्चे, बिना प्राप्ति के तुम बस कर्म करते चलो। तुम्हारा काम है श्रेष्ठ कर्म करते चलना, और भूल जाओ, नेकी करो और दरिया में डाल दो। याद भी नहीं रखो कि तुमने कुछ अच्छा किया था और किसी ने तुम्हारी तारीफ की, तुम तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, हमसे और अच्छा कार्य इम्पॉसिबल है। और आपको जो दिख रहा है ना, वो हम नहीं कर रहे हैं, वो कराने वाला करा रहा है, वरना हम तो लायक भी नहीं है। अच्छा कार्य करने के नहीं, अच्छा कार्य करने के सोचने के भी लायक नहीं हम ऐसे हैं। करना तो छोड़ ही दो बच्चे। बच्चे कर्मों पर ध्यान दो, यह संगम कर्म का है। तुम्हारे जीवन में ब्राह्मण परिवार से कितने जुड़े हैं, वो नहीं जुड़ेंगे, तुम्हें जुड़ना है। तुम कितनों से जुड़े हो आत्मा आत्मा भाई के रूप में, तुम कितनों से जुड़े हो। बाप यहां बच्चों को यही पूछता है ना कि मुझे पोता मेल दो। तुमने कितनों को गुड मॉर्निंग किया और कितनों ने तुम्हें गुड मॉर्निंग किया। तुमने कितनों को गुड नाइट किया और कितनों ने तुम्हें गुड नाइट किया। तुमने अगर गुड मॉर्निंग गुड नाइट किया तो तुम पास हो गए, पर किसी और ने अगर तुम्हें किया तो तुम ना पास हो गए। समझ की बात है। तुमने कितनों को पानी का गिलास दिया, अपना लिया कोई बड़ी बात नहीं बच्चे, अपना पानी लेना, ये तो क्या जानवर भी अपने घाट पे जाते हैं पानी पीने, मक्खियाँ भी जाती है, कीड़े मकोड़े भी जाते हैं, पेड़ पौधे भी अपना पानी ढूंढते हैं, पर तुमने कितनों को पानी का गिलास दिया हाथ में, कितनों को चाय कॉफ़ी पिलाई, कितनों को नाश्ता भोजन कराया, और कितनों ने तुम्हें कराया, तुमने कितनों की व्यवस्था की, कितनों का बिस्तरा लगाया, तकिया लगाया, चादर लगाई, और कितनों ने तुम्हारा लगाया। तुम अपना लगाओ तो कोई बड़ी बात नहीं बच्चे। सेवा किसे कहते हैं जिसमें मेरा कोई संबंध नहीं प्राप्ति में, वो है सेवा। बाकी जो तुम कर रहे हो अपने प्रति वो कोई सेवा नहीं है, वो कर्तव्य है तुम्हारे। तुम हिसाब लगाओ तुमने आज कितनों की सेवा की, तुमने आज कितनों को अच्छे बोल बोले। पानी तो सभी मांगते हैं, पिलाते कितने हैं, पूछकर पानी चाहिए आपको, चाय पियेंगे, कॉफी बनाए आपके लिए, दूध पीते नहीं इसलिए दूध की तो बात कर नहीं सकते, दूध तो दूध रहा नहीं, दूध का दूध पानी का पानी भी नहीं रहा हो, कुछ और ही बना हुआ है। समझ के बात है बच्चे, तुम चेक करो कितनों के प्रति तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं। चलते चलते अच्छी जगह है, कचरा पड़ा है, छोटे मोटे टुकड़े हैं एक दो, और तुमने उठा के डस्टबिन में डाल दिए, अच्छा ही किया ना, बुरा तो नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि तुम कचरा उठाने के लिए गांव भर मना घूमते रहो पूरा पूरा गांव में, नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारे ही घर में चीज़ें पड़ी होती है इधर उधर, उन्हें जगह पर रखो ठीक ठाक। अच्छा कर्म हुआ ना, किसने बिगड़ाया वो छोड़ो, सुधारने वाला कौन है ये देखो। बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, सुधारने वाला परमात्मा है, और जब भी तुम सुधारने का कार्य करते हो ध्यान में रखना उस घड़ी जैसे कि परमात्मा तुम्हारे द्वारा कार्य कर रहा है, वो है तुम्हारे पास तुम्हारे साथ। मदद करने वाला हमेशा परमात्मा होता है, एक ही मदद करता है। जब भी तुम किसी को मदद करते हो समझ जाना परमात्मा तुम्हारे पास तुम्हारे साथ है। सेवा करने वाला, सेवा देने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। जब भी तुम किसी को सेवा देते हो फिर एक पानी का गिलास भी क्यों ना हो, समझ जाना परमात्मा है वहाँ पर। किसी को तुम शुभ भावना शुभ कामना देते हो उस घड़ी बाप हाजिर रहता है। सारी दुनिया को या किसी को भी तुम सकाश देते हो बाप तुम में हाजिर रहता है। अभ्यास करके देखो, सकाश दे के देखो, तुम्हें महसूसता होगी बाबा बैठा है तुम्हारे अंदर। बहुरूपी है वो, अनंत रूपी है वो, इस तरीके से हर कण में वो विराजमान है। एक जगह पर ही स्थित है पर हर कण में भी विराजमान है वो। जब भी तुम स्नेह भरे बोल बोलते हो किसी के प्रति परमात्मा तुम में है। जब भी तुम किसी से नम्रता से चलते हो परमात्मा तुम में है। बच्चे ध्यान में रखना, इस दुनिया में दो ही पार्ट बजाते हैं, दो ही, तुम सब सारी दुनिया निमित्त है, एक माया और दूसरा परमात्मा। जब भी तुम्हारा मन इरिटेट होता है, बुद्धि अस्वस्थ होती है, संस्कार विचलित हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, बोल दुख देने वाले निकलते हैं, कर्म नुकसान करने वाले होते हैं, दृष्टि किसी को परेशान करने वाली होती है, वृत्ति किसी को इरिटेट करने वाली अस्वस्थ करने वाली होती है, तुम्हारे अंदर पूर्णता माया प्रवेश है। कारण कुछ भी हो, तुम्हें किसी ने थप्पड़ भी मारा और तुम इरिटेट हो गए, माया है। तुम्हें लगा या तुम्हारे गाल को लगा, शरीर को लगा, गाल को शरीर को लगा ना तो तुम आत्मा को दुखी होने की बात कहाँ आए? आत्मा का तो दूर दूर तक संबंध नहीं है, तुम क्यों नाराज हुए? किसी ने तुम्हें नाम रूप से गाली दी, तुम्हारे शब्दों के हिसाब से बुरा बोला, तो किसको बोला? तुम्हारे देह को देखकर बोला ना, देह को लेकर बोला ना, तो आत्मा नाराज होने की बात कहाँ आए? आत्मा क्यों नाराज हुई? बाप भी पूछ रहा है, आत्मा क्यों नाराज हुई? ये फलाना है ना, इसे अकल नहीं है। क्या बोला उसने? फलाना ना, ये बोला, ये फलानी जो आत्मा है उसे अकल नहीं है। कोई ऐसा बोलने वाला दुनिया में? आत्मा को नहीं बोला ना, फलाने को बोला है ना, तो तुम क्यों नाराज हो रहे हो? किस बात को लेकर नाराज हो रहे हो? तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? तुम्हारे देह को लेकर, खानदान को लेकर कोई कुछ भी बोले, तुम स्थिर रहो, तुम शांत रहो, तुम अच्छा बोलो। संतों को अच्छा बोला किसी ने? उनके खानदान को किसी ने अच्छा बोला? आज पूजा कर रहे हैं, समझ के बात है बच्चे, समझदार बनो पूरे पूरे। देह की बात है ना, देह में क्यों आते हो? ये फलानी दीदी, दादी, बहन, भाई, दादा, ये ऐसे है, उनको बोला है ना, क्यों बोला है? जिसने बोला है, दो अर्थ है, या तो उस दीदी, दादी, बहन, भाई, दादा, भाई, जो भी है, उस नाम रूप से कोई ऐसे कर्म हुए जिसके कारण उन्होंने बोला है। कर्मों को बोल को देखकर अगर बोला है तो सत्य बोला है, मतलब बोलने वाला सत्य है, और उनसे ऐसा कोई कर्म भी नहीं हुआ है तो बोलने वाला सत्य है। तो दोनों भी केस में जिसके प्रति बोला जा रहा है उसे नाराज होने का अधिकार नहीं है। अगर तुम्हारे प्रति सत्य बोला जा रहा है तो तुम नाराज नहीं हो सकते, और अगर तुम्हारे प्रति जो बोला जा रहा है वो असत्य है तो नाराज किस लिए हो रहे हो? कोई मेंटली रिटायर्ड पर्सन पागल खाने से आया और तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले, नाराज होंगे? होंगे क्या नाराज? तुम जानते हो वो पागल खाने से आया है, नहीं होंगे ना। बात वही है बच्चे, स्थिर रहो, शांत चित्त रहो, अच्छे अच्छे कर्म करो, ध्यान दो, कर्मों पर ध्यान दो। आत्मा जानती है मैंने इस शरीर से अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। बाबा तुम बच्चों को समझ देते हैं, यह तो जरूर है सब पतित थे। अभी तुम देखो हम कहाँ तक पावन बने हैं और दैवी गुण धारण किए हैं। दैवी गुण धारण कराने वाला है सर्व गुणों का सागर बाप, वह बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, खुद कहते हैं हमारे में गुण नहीं है। अब तुम बच्चों को फिर 100% सर्वगुण संपन्न बनना है। कहते हैं अपने दिल दर्पण में देखो, जब सर्वगुण संपन्न बनेंगे तब ही तुम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण को वर सकेंगे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना चाहिए, ऐसा जो बेहद का बाप है जिसके लिए गाते हैं तुम मात पिता, उस परम पिता की बड़ी महिमा है। कहते हैं शिवाय नमः, अब वह तो स्वर्ग का रचयिता है, जरूर हमको बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही है जो हमको देते हैं। भारत को स्वर्ग की बादशाही थी, अभी नहीं है, जरूर बाप से ही मिली थी। भारत ही सचखंड बनता है, सच शिव बाबा का यह जन्म स्थान है, यह कोई नहीं जानते। शिवरात्रि गाई जाती है वह कौन सी? श्री कृष्ण की भी रात्रि, शिव की भी रात्रि दिखाते हैं। श्री कृष्ण का तो माँ के गर्भ से जन्म हुआ है, शिव बाबा के लिए जन्माष्टमी तो वास्तव में नहीं कहेंगे, शिव बाबा आते ही तब है जब ब्रह्मा की रात होती है। रात के बाद दिन अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारी रात। यह बेहद की बात हो गई। हद की रात तो होती ही है, परंतु कलयुग अंत को घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, सतगुरु ज्ञान सूर्य बाप को कहा जाता है। पहले पहले तो बाप और वर्षे का परिचय देना है। समझो कोई बादशाह को बच्चा नहीं है, किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेता है तो बच्चा दिल में जानता है ना कि मैं गरीब था, अब मैं बादशाह का बच्चा हूँ। तुम भी जानते हो हम रावण का बनने से बहुत गरीब कंगाल बन गए थे, अभी हम बेहद के बाप के बने हैं, उनसे हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। यह अच्छी तरह परिचय देना है और फिर लिखा कर लेना है, हमको बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। यह ज्ञान और कोई दे नहीं सकता। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, वह फिर माँ बाप चाचा मामा आदि कहलाने से निकल गए, खलास। यहाँ तो गृहस्थ धर्म की बात है, वह गृहस्थ धर्म का त्याग करते हैं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम सो देवी देवता गृहस्थ धर्म में थे, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे और तुम स्वर्ग के मालिक भी थे। फिर पूज्य से तुम पुजारी बन अपनी पूजा भी करते हो। जब तुम पूज्य सो देवी देवता हो तो तुमको वहाँ पूजा करने की दरकार नहीं है। वैसे ही भारत देवी देवताओं का पूज्य कुल था, अभी पूज्य से पुजारी बने हो, फिर तुम बच्चों को पुजारी से पूज्य देवी देवता बनना है। इसलिए ही गाया जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप पूज्य और पुजारी नहीं बनते, बाप तो सदा पूज्य है ही। भक्ति मार्ग में ब्राह्मण लोग मंदिर में शिवलिंग रखते हैं, फिर बाप की बैठ पूजा करते हैं, हम उनके बच्चे हैं, हे परमपिता परमात्मा, ऐसे कहेंगे ना। वह तो है निराकार, आत्मा भी है निराकार। शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं परमपिता परमात्मा निराकार शिव। यह आत्मा ने कहा इन ऑर्गन्स द्वारा। अभी तुम बच्चे यह भी जान गए हो कि जो अच्छे कर्तव्य करके जाते हैं तो उन्हों की महिमा की जाती है। अभी तुम माता पिता उस निराकार को ही कहते हो। तुम्हारे सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा से हम सुख घनेरे पाएंगे, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कितनी सहज बात है, तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बी के प्रैक्टिकल में हो, सम्मुख बैठे हो, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के सम्मुख हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तुम जानते हो, शिव बाबा इनके मुख द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह कैसे कहेगा कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो, अपने को आत्मा समझो। यह श्री कृष्ण तो कह न सके, यह तो बाप ही कह सकते हैं। तो यह बड़ी भूल हुई है ना। लक्ष्मी नारायण से लेकर यथा राजा रानी तथा प्रजा उन सबको तो सुख मिला हुआ था, वही सब 84 जन्म ले तमो प्रधान बने हैं। मूल लक्ष्मी नारायण हुए ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी फिर तुम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, यह तुम्हारा लीप जन्म है। लीप कहा जाता है धर्माऊ को, तुम जानते हो हमारा यह ईश्वरीय जन्म है। दिन प्रतिदिन बाबा नई नई पॉइंट्स समझाते रहते हैं। जहाँ तक जीना है अंत तक तुमको पढ़ना है। पॉइंट्स निकलती रहेंगी, ऐड होती जाएंगी। ज्ञान यज्ञ भी अंत तक चलना है। रुद्र यज्ञ रचते हैं, मिट्टी के सालिग्राम बनाकर उनकी बैठ पूजा करते हैं। आत्मा की पूजा होती है। तुम जीव आत्माओं ने ही भारत को सिर ताज बनाया है, तो आत्माओं की पूजा करते हैं। परमपिता परमात्मा बाप के साथ तुम भी सर्विस कर रहे हो, तो शिवलिंग के साथ सालिग्राम भी बनाते हैं। तो मुख्य पहले पहले बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ने जन्म लिया, परंतु माता के गर्भ से थोड़े ही जन्म लेते हैं, वह है ही निराकार। जैसे कोई शरीर छोड़ देता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं श्राद्ध खाने के लिए, तो आत्मा को खिलाते हैं ना, आत्मा ही स्वाद लेती है। कड़वा मीठा दुख सुख यह आत्मा को भासता है। आत्मा में ही संस्कार है। आत्मा को सुख व दुख तब भासता है जबकि शरीर है। बाबा ने समझाया है सजा कैसे मिलती है। सूक्ष्म शरीर भी नहीं, स्थूल शरीर धारण कराए सजा देते हैं। गर्भ जेल में सजा खाते हैं, त्राही त्राही करते हैं, बस मुझे बाहर निकालो। गर्भ महल का भी मिसाल दिया हुआ है। बच्चे विचार करो, तुम इरिटेड हो और तुम्हें कोई सुना रहा है और सुना रहा है, तुम कह रहे हो बस मुझे अभी नहीं सुनना है, फिर भी वो सुना रहा है, कैसे लगेगा? ये होता है गर्भ में। बाहर निकल भी नहीं सकते तुम और आत्मा अंदर है, वो धर्मराज क्या सपने दिखाएगा, क्या सीन सीनरी दिखाएगा, बाहर निकल भी नहीं सकते, सजा खानी पड़ती है। ज्यादातर कब होता है ये? जब बच्चा चुरपुर करने लगता है ना गर्भ में, मना भी वो सजग हो गई आत्मा, धर्मराज शुरू करता है खेल। तुम कान बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि अपने हाथ उठते नहीं कानों पर रखने के लिए, नमुख से कुछ बोल सकते हो। सोचो क्या सजा होगी, क्या सजा होगी तुम्हें। शरीर बड़ा होकर रात को सोने के बाद सपने आते, फिर भी तुम डर जाते हो। वो तो अभी अभी का शरीर है, पूरा बना भी नहीं है, क्योंकि पूरा बने तो गर्भ से बाहर निकलेगा। सोचो क्या दुख भोगती होगी आत्मा। इसलिए बच्चे कर्म श्रेष्ठ रखो, कर्म श्रेष्ठ रखो, वरना सजा खानी पड़ती है। ध्यान में रखना बच्चे, सूक्ष्म शरीर भी नहीं, स्थूल शरीर धारण कराए सजा देते हैं। गर्भ जेल में सजा खाते हैं, त्राही त्राही करते हैं, बस मुझे बाहर निकालो। गर्भ महल का भी मिसाल दिया हुआ है। बाहर निकलने नहीं चाहते थे, यह दृष्टांत है। सतयुग में गर्भ भी महल बन जाता है, वहाँ कोई पाप होता नहीं। अभी तुम जानते हो पतित कैसे हुए हैं, नाम ही है अजामिल जैसे पतित। बहुत पाप करते हैं, पावन मन निर्विकारी, मूल बात ही विकार की है। इसलिए पावन बनने के लिए सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, तो उनको महात्मा कहते हैं। मनुष्य सब पतित हैं, इसलिए गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। अब राजा राम तो शिव बाबा को नहीं कहेंगे, राम परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। राजा राम नहीं, मैं तो राजा महाराजा बनता नहीं हूँ। श्री लक्ष्मी महारानी नारायण महाराजा तुम बनते हो, हम नहीं। मैं तो निराकार पुनर्जन्म रहित हूँ। शरीरधारी जो है वह सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं हूँ निराकार, मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम सो देवी देवता थे, फिर शूद्र बने, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। मैं तुमको समझाता हूँ, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। जो ब्राह्मण बनेंगे वही आकर समझेंगे। बाप कहते हैं इस प्रकार तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। कहा जाता है 21 पीढ़ी का वर्षा, बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देंगे ना। लौकिक बाप से तो अल्पकाल का सुख मिलता है, अमर लोक में आदि मध्य अंत सुख है, यहाँ आदि मध्य अंत दुख है। तुम पार्वतियों को अमरनाथ शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं, सत्यनारायण की कथा भी वह सुनाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा है। भारतवासी सदा सुखी थे, बहुत पवित्र थे, पवित्रता हेल्थ वेल्थ थी, कभी कोई बीमार नहीं पड़ते थे। नाम ही है स्वर्ग, भारत प्राचीन स्वर्ग था, और कोई